फिर तुमने उसको आंखों से देख लिया अपने सामने, तो फिर क्यों घबराना? तो एक तो ये है कि वो मौत देखने और उसकी तरफ इशारा है। आगे वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर एक रसूल ही है। ये आपकी शान को घटाने के लिए नहीं कहा गया और एक हकीकत की तरफ इशारा इसमें किया गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल ही तो है। ये कि ये समझ लिया जाए कि ये मरने वाला इंसान नहीं है, क्योंकि जब अकीदत आती है तो लोग इसी तरह की बातें बना लेते हैं। इस वक्त दुनिया में बीसियों लोग हैं कि वो मर गए और लोग समझते रहे जी बस जिंदा है, अभी आ रहे हैं। सैयद अहमद शहीद के मुतालिक अकीदा शायद अब भी बाज़ लोगों का हो, और ये महदी वगैरह और यमन के कई इसी तरह से जी बस वो आने वाला ही है। ये क्या होता है? वल्लाह अलम लोग हिटलर के मुतालिक कहते रहे और सुभाष चंद्र बोस के मुतालिक कहते रहे कि जी वो मरा नहीं, बस वो तरकीबें कर रहा है और आ रहा है। ये चाहे हौसला बुलंद करने वाली बात हो या फिर अकीदे की शक्ल में गलत बात भी हो जाती है कि जी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी लोगों का ये ख्याल गालिबन पैदा हो गया था कि ये मरेंगे नहीं, जाहिर तो नहीं किया था। यही वजह हुई कि जंगे उहद में एक मौके पर यह अफवाह फैल गई कि हुजूर शहीद हो गए। वो मुसलमानों पर बड़ा सख्त वक्त था कि ये कहते हैं कोई शैतानी आवाज थी या क्या थी, बहरहाल किसी ने बुलंद आवाज से कहा या जिसने हमला किया था उसने पुकार के कहा कि मैं मोहम्मद को कत्ल कराया हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो मैदान जंग में ये जब बात फैली तो मुसलमानों के तो हाथ पांव शल हो गए। खैर, हिम्मत वाले फिर भी लड़ते रहे। रिवायतें हैं कि एक आदमी बैठा था यूं एक पहाड़ी पत्थर पर, किसी ने कहा क्या हुआ? कहने लगा क्या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शहीद हो गए। तो उसने कहा वो शहीद हो गए तो चलो हम भी शहीद हो, हमने फिर दुनिया में रह के क्या करना। तो अपना अपना रद्द अमल होता है। तो बहरहाल उस खबर ने क्योंकि एक बड़ी बददिली फैला दी थी, इसमें शक नहीं है, जंग उहद की तारीख में उसकी तरफ इशारा है कि मोहम्मद एक रसूल ही तो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कद खलत मिन कबलिह रसूल, गुजर चुके हैं उनसे पहले रसूल, खला यखलू पढ़ चुके हैं, गुजरना, अलहदा होना, खाली होना, ये सारे मैंने इस फेल के हैं खेलाम वाव से। खला इलाक मैंने होते हैं खिलवत में जाना, अलहदगी में जाना, सिर्फ खला हो तो उसके मैंने खाली होना या गुजर जाना होता, और दरअसल गुजर जाने में भी खाली होने की सेंस है। मिन कबल ही अर रसूल, बहुत से रसूल या सारे रसूल जो उससे पहले हुए, अलफलाम में सबकी तरफ इशारा है, उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। ये बात के पहले भी रसूल हुए और उनको भी मौत आई और वफात हुई, वे कुरान करीम में 17वें पारे में और तरह भी मजमून बयान हुआ है। अफा इम्माता, यहां इसके तर्जमा करने से पहले, बल्कि यही आया था, इसका तर्जमा हम कर लें फिर बताएंगे आपको। अफा इम्माता, ये लफ्ज बड़ा अजीब है। एक तो आफा है हमजा और फे, और हमें पता है कि फा हल या आफा यूं लगता है, इन शर्तिया है, इन माता अगर मर गया वो, ये तो है इन, इस इन पे लगा अफा, क्या पस अगर, तो क्या अगर यूं तर्जमा होगा, माता वो मर गया। इसमें ये लिखा इस तरह जाता है कि अफा, अफा के बाद अलेफ और नून से पहले एक दंदाना जो ये का समझिए या हमजा का समझिए, क्योंकि हमजा ऐसे मौके पर जेर के साथ है तो ये के ही ऊपर नीचे लिखा जाएगा, जैसे उला इका लिखते हैं तो एक ये का दंदाना देते हैं और हमजा नीचे लिखते हैं। बल्कि बाज अफ्रीकी मुल्कों में उला इका में दंदाने के नीचे हमजा लिखकर एक नुक्ता इधर और एक नुक्ता इधर भी ये का दो नुक्ते भी देते हैं उला इका। हमारे यहां उला इका नीचे उला एका के ये के दंदाने के ऊपर हमजा लिखना गलत है, क्योंकि हमजा में जेर है वो नीचे ही लिखना चाहिए। तो ये उस तरह से दंदाना है इनका। अब इस लफ्ज के रस्म तो है यही अलेफ फे अलेफ दंदाना नून। हजरत उस्मान के नुस्खे में कोई फे शे जबर हमजा नहीं था, हमजे तो थे ही नहीं। अब पढ़ना था इसे अफा इन, जब्त में लाना था। अब्बास ने यूं किया जैसे इसमें है कि जो फे के बाद अलिफ है वो जायद है, उसको नहीं पढ़ना, अफा इन नहीं पढ़ना। इस हमजे पे काटा लगाओ और अगला जो दंदाना है उसको हमजा जेर नून इन पढ़ो, अफा इन। यहां हमारे कुरान मजीदों में अक्सर यूं लिखा मिलता है कि फे को जायद, फे के बाद वाले अलिफ को काटा लगाते और इन को जो दंदाना है वो हमजे का है उसके नीचे हमजा लिखते हैं अफा इन। मिस्र वगैरह में यूं लिखा जाता है कि वो कहते हैं वो जो फे के बाद अलिफ है वो ही पढ़ा जाएगा, वो उस अलिफ के नीचे हमजा देते हैं अफा इन, और फिर जो ये का हमजा या सिर्फ ये के दो नुक्ते होने चाहिए उस पे काटा लगा देते हैं कि इसको नहीं पढ़ना, पिछले अलिफ को ही अलिफ ज़ेर नून इन पढ़ो। पढ़ा दोनों सूरतों में अफा इन नहीं जाता, उनका जब्त अपना है, वो उस तरह अफा इन पढ़ लेते हैं कि फे के बाद वाला जो अलिफ है उसी पर हमजा नीचे डाल के हमजा ज़ेर नून इन डाल देते हैं। और इस सूरत में जो ये दंडाने वाले दो दंडाना जो हमजे का है वो उनके नजदीक जायद है, वो काटा उस पर लगा देते हैं। हमारे यहां उस पहले अलिफ पर काटा लगाते हैं और ये वाले हमजे को बरकरार रखते हैं, तो दोनों सूरतों में बनता है। तो क्या पस अगर माता वो मर गया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाती है जमीर, और कुतला या कत्ल कर दिया गया, इन कलब तुम मला आकाबिकुम, तुम फिर गए अपनी एड़ियों पर, इन कलबा यन कलेबो फिर जाना, टू टर्न बैक यही मायना होता है इसका, वापस मुड़ जाना, इनकलब तुम वापस चले गए, और चूंकि शर्तिया है लादा तर्जमा होगा तो वापस चले जाओगे, अला आकाबकुम अकब उन एड़ी को कहते हैं, अकब है उसकी दोनों एड़ियां, आकाबू हम उनकी एड़ियां, आकाब इसकी जमा आती है, तो अला आकाबकुम तुम अपनी एड़ियों पर वापस मुड़ जाओगे। एड़ियों पर वापस मुड़ना यानी जहां खड़े हैं एड़ियां दूसरी तरफ हो जाए, जिसे आजकल वो फौज के कहते थे राइट अबाउट टर्न, बिल्कुल ठीक पीछे वापस मुड़ जाना, जिधर मुंह है उधर पेट कर लेना, तो वो एड़ियों पर ही मुड़ते हैं। तो तुम क्या मुड़ जाओगे अपनी एड़ियों पर, यानी उल्टे वापस हो जाओगे फिर कुफर की तरफ। मुराद ये है वमई अनकलिब अला अकबैह, और जो कोई लौट जाएगा अपनी दोनों एड़ियों पर, अकबुन हुई एड़ी, अकबै है अला अकबै है नून गिरा अकबैने का, अपनी दोनों एड़ियों पर, एक आदमी की दो एड़ियां होती है, जमा के सीगे में आकाब कुम आया है तुम्हारी एड़ियां, तो जो मुड़ा अपनी दोनों एड़ियों पर यानी उल्टे मुंह मुड़ गया उल्टे पांव, फलाई यदुर्रल्लाह शैया फे जवाब शर्त पर आया है, बस हरगिज वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, दर्रा यदुर्र नुकसान पहुंचाना, लई यदुर्रा हरगिज नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अल्लाह अल्लाह को यानी अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करेगा, शय अन कुछ भी। यहां शय अन ग्रामर वाले कहते हैं मफूल मुतलक के मान में है, यानी असल इबारत है फल यदुर्रल्लाह दर्रन कोई नुकसान, वह अगर मफूल मुतलक आता वो भी यही मायना देता, तो शय अन इस वजह से नसब में आया है, वरना दर्रा का दूसरा मफूल नहीं आता, मफूल तो एक ही होता है वर्रहू, उसने उस आदमी को नुकसान पहुंचाया, इसका दूसरा मफूल कोई नहीं होता। तो यहां यह नहीं है कि अल्लाह एक मफूल है और शयन दूसरा मफूल है, दर्रा के दो मफूल होते ही नहीं, अलबत्ता दर्रा की बजाय मफूल मुतलक लगाए तो यह बनता है। चुनाचे ग्रामर वाले कहते हैं कि कुरान करीम में अक्सर जहां शयन किसी फेल के बाद आया है बसूरत नसब, दरअसल वो उसी फेल के मफूल मुतलक के मानों में आता है और इस वजह से उसकी नसब होती है, फलन यदुर्रल्लाह दर्रन नहीं पहुंचाएगा नुकसान, अल्लाह को कोई नुकसान पहुंचाना, इसलिए शयन आया है मफूल मुतलक का बदल होकर, वो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा हरगिज, वसयज जिल्लाहुश्शाकिरीन और अल्लाह जरूर बदला देगा, अनकरीब बदला देगा, सयज जिल्ला जैसा यज पढ़ चुके हैं ये जीम दे ये मादा से, बदला देगा जजा देगा, अल्लाह फायल है, अश्शाकिरीन शुक्रगुजारों को शुक्र करने वालों को। यही वो आयत है आपने गालबन अलमनहज अल अरबी में भी पढ़ा है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है तो खबर जो फैली मदीने में, सहाबा तो परेशान हो गए, ये एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज थी। तो मस्जिद में इकट्ठे होने लोग शुरू हुए, क्योंकि आप मस्जिद के साथ ही अपने हजरत आयशा वाले हुजरे में ही आपकी वफात हुई थी। तो अजीब इत्तेफाक हुआ कि हजरत उमर पर तो कुछ ऐसा असर हुआ कि उन्होंने कहा जो कहेगा ना कि रसूलुल्लाह फौत हुआ, मैं उसकी तलवार से गर्दन उड़ा दूंगा। कोई फौत नहीं हुए, वो गए अपने रब के पास और अभी वापस आ जाएंगे। एक सदमे का असर था, वो इस हालत में वो वहां पहुंचे। फिर आपने पढ़ाया हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, उन्होंने जाके हुजूर की मैयत देखी और वो एक सना के फिक्र तारीफ के कहे। बाद में बाहर निकले, उन्होंने कहा छोड़ो छोड़ो, जो कुछ कहता कहता रहे, मेरी बात सुनो। और फिर उन्होंने ये आयत पढ़ी थी और हजरत उमर कहते हैं कि मुझे तो ऐसे लगा ये आयत पहले कभी पढ़ी नहीं थी। वमा मोहम्मद रसूल कद खलत मिन कबलिहि रसूल लफइमाता वक़तलन कलब तुम्हारा आकाबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो जाए या कत्ल हो जाए तो क्या तुम वापस चले जाओगे? उस पे आगे फरमाया कि ब्रो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, सारे वापस चले जाओ। तो भी वही फितना इर्तदाद की इब्तदा थी और उसकी तरफ एक इसमें इशारा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत और गैर फानी होने वगैरह की तरफ इसमें इशारा है कि कहीं ये ना समझ लें। बदकिस्मती से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बातें कुरान में आई पढ़ी, इसी तरह से ये अफ इन यहाँ आया 17वें पारे में है अफ इन मित फहुमुल खालिदून, क्या ये हो सकता है कि तू मर जाए और वो दूसरे सारे जिंदा रहें? वहाँ कुछ दुश्मनों के बारे में आया है। तो लेकिन फिर बाद में मुसलमानों में ऐसे हुए कि जी किसी ने कहा जी मादी जिंदा है, किसी ने कहा फलां जिंदा है, ये किसी हाँ कि ये दिमागी सदमे का असर होता है या मकर होता है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्योंकि सदमे में भी आदमी ये कह जाता है, हजरत उमर को मकर तो नहीं कर रहे थे, उन्होंने कोई खास कोई स्कीम तो नहीं बनाई थी कि फिर हम मादी गायब करेंगे, बैठ जाएंगे और कहेंगे आने वाला है, वो तो सदमे का असर था। तो इस तरह से मुसलमानों ने ऐसा बना डाला कि गोया का कोई अभी जिंदा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुसलमानों को यह अकीदा है और कुरान करीम और हदीस की बहुत सी बातों की रोशनी में है, एक एक्सेप्शन के तौर पर। वो मिर्ज़ा साहब ने इसीलिए कि हुजूर के अलावा बाकी भी सब मिटने वाले हैं ऐसे इस्तदलाल किया है, तो वो एक एक्सेप्शन है। हर लिहाज से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक्सेप्शन है, उनकी विलादत भी एक्सेप्शन है, उनकी ज़िंदगी भी, उनके मौजज़े भी, उनका इस दुनिया से जाना आना भी, वो मसला ही एक अलग है। और हमें कुरान हदीस में काफ़ी वाफिर सबूत मिलता है कि जो जमहूर मुसलमानों का अकीदा है वही दुरुस्त मालूम होता है, वैसे अल्लाह बेहतर जानता है। क्योंकि बहरहाल वो अलग एक मसला है कि उस मसले की पोजीशन क्या है, लाजिम है मानना या ना लाजिम। आगे फरमाया वमा कान लिनफ्सिन, किसी जान के लिए ये नहीं है। अब नहीं है किसी जान के लिए, यानी उसके लिए जायज़ नहीं है, उसके लिए मुनासिब नहीं है, उसके लिए कोई हक नहीं है, उसके लिए मुमकिन नहीं है, जो भी आप कर लें। नहीं है किसी जान के लिए ये बात, यानी जायज़ या कानून जो बना लें, अंतमूता कि वो मर जाए, किसी जान के लिए ये नहीं है कि वो मर जाए, इसी को इन्होंने तर्जमा किया है, और कोई मर नहीं सकता इल्ला मगर यूं। लफ्जी तर्जमा नहीं है किसी जान के लिए ये जायज, ये मुनासिब, ये मुमकिन, अंतमूता कि वो जान मर जाए, अंतमूता मुअन्नस का सीगा है नफ्स के लिए, यानी किसी शख्स के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो मर जाए, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के हुक्म से, इजाजत, यानी मौत आती है अल्लाह के हुक्म से। खुद कोई मर नहीं सकता किसी वक्त भी, खुदकुशी करने की भी कोशिश करे तो बच जाते हैं, तो मौत अल्लाह के हुक्म से आती है। वमा कान लिनफ्सिन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह, नहीं है किसी नफ्स के लिए ये मुमकिन कि वो मर जाए मगर अल्लाह के इज्न से, मौत अल्लाह के हुक्म से आती है। किताबम मुअज्जलन, किताब यहां बमाना मक्तूब है, लिखा हुआ, और फिर बमाना कानून आता है, कानून है। मुअज्जलन, अज्जला युअज्जिलु तअजीलन हमजा के साथ, इसके माने मियाद मुकरर कर देना, अजल मुकरर कर देना, उसके लिए टाइम मुकरर कर देना, इस तरह से मुअज्जल जिसका एक टाइम मुकरर कर दिया गया, ये महर मुअज्जल और मुअज्जल हमारे यहां कहते हैं, जिसकी आगे कोई डेट मुकरर कर दी गई फौरन नहीं देना उसको मुअज्जल कहते हैं। तो मुअज्जल के मैंने जिसको अजल दी गई, जिसका एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया, किताब मुअज्जलन, एक कानून है लिखा हुआ है जिसका वक्त मुकर्रर किया गया। अब आपको सोचना चाहिए कि ये फिक्रा जुमला इस्मिया कैसे बन गया, किताब है या तो होता अल किताब मुअज्जलन, तब तो कोई बात होती, जुमला इस्मिया बनता। किताब मैंने कानून नविश्ता तहरीर, तहरीर है जिसकी मियाद मुकर्रर है। तो ये तो दोनों नसब में, ये नसब कैसे आ गई, ना कोई मुब्तदा ना खबर, और तर्जमा यही किया इन्होंने, लिखा हुआ है एक वक्त मुकर्रर, ये तो जुमला इस्मिया का तर्जमा है। और यहां ना कोई जुमला इस्मिया है ना कोई जुमला फेलिया है। तो ये किताब मुअज्जलन की नसब, जो आपने नसब के कायदे पढ़े हैं कि बाज़ दफा एक फेल होता है मुकद्दर, हम उसको महजूफ समझते हैं और उसका फिर मफूल या मफूल बिही वगैरह नसब में आ जाता है, या वही बात है। कुतिबा किताबन मुअज्जलन, यूं कह रहे, या कतबल्लाहु किताबन मुअज्जलन, एक फेल है इससे पहले, अल्लाह ने मुकरर कर दिया है एक नविश्ता जिसका वक्त मुकरर है, या मुकरर कर दिया गया, कुतिबा लगा ले। तो यहां कोई फेल इससे पहले माजूफ है जिसका मफूल होकर ये आ रहा है किताब। कुतिबा तो नहीं कह सकते, इसलिए कि अगर कहें कुतिबा तो फिर कुतिबा किताबन नहीं, फिर तो कुतिबा किताबन होना चाहिए, क्योंकि कुतिबा तो कोई नायब फाइल आना चाहिए ना, कुतिबा किताब मुअज्जलन, लिहाजा कुतिबा भी ठीक नहीं, बल्कि कतब अल्लाह किताबन मुअज्जलन यूं बनाएंगे। तो अल्लाह ने लिख दी एक किताब जिसकी अजल मुकर्रर कर दी गई, यानी अल्लाह का एक कानून है, एक लिखी हुई चीज है जिसकी अपनी एक मियाद मुकर्रर है। किसके बारे में, यानी मौत का, मौत का वक्त, वक्तुल मौत वगैरह के बारे में है, क्योंकि बात मौत की हो रही है, कोई नहीं मरता मगर अल्लाह के ही इज़्ज़न से। और फिर अल्लाह का इज़्ज़न भी यह है कि एक वक्त मुकर्रर दे दिया गया हर एक की मौत का, उसी वक्त वो मरेगा। वो मयूर सवाब दुनिया, जिसने इरादा किया दुनिया के सवाब का, मन शर्तिया अरादा युरीद उसे युरीद बना, मजूम होकर रे वाउदाल मादा इसका पहले बयान हो चुका है, उससे ये बाबे फाल है। वह मैं युरीद, जिसने इरादा किया, जिसने चाहा, सवाब दुनिया उसका मफूल है, दुनिया के सवाब का। दुनिया दने व यददा से फौला का वजन है, अफल तफजील का मोनस का सीगा, और इसके मैंने करीब की चीज भी हो सकता है अगर दना यदनू से ले, और दने व यदना जो कि दनी यदना बनता है वावी से, उसके मैंने घटिया होना और हकीर होना, उससे अगर ले तो दुनिया के मैंने हकीर तरीन चीज मोनस लिखना इसे चाहिए था ये, और उसके ऊपर खड़ी जबर से, लेकिन उलिया और ये दुनिया और शायद एक दो लफ्ज और है कि वो उकबा और हुसना की तरह ये से नहीं लिखे जाते, बल्कि ये के बाद अलिफ लिखी जाती है, उनमें से एक ये भी है, वरना इसे भी हुसना कुबरा की तरह ये पर खड़ी जबर से लिखना चाहिए था, लेकिन इसकी इमला यूं ही कुरान करीम में आई है हजरत उस्मान वाले नुस्खों में और फिर आम अरबी में भी। जिसने चाहा दुनिया का सवाब अजर, सवाब मजदूरी और अजर की ही के मानों में आता है, से वाव बे मादा से साब यसूबो, और बाज कहते हैं कि अजर में और सवाब में ये फर्क है कि अजर बंदे की तरफ से भी होता है, जैसे कोई मजदूरी करे और उसको अजर दिया जाए या ले, सवाब सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली मजदूरी या उसके अजर को कहते हैं। नोते ही मिनहा, दुनिया का सवाब चाहे, यानी दुनिया ही में चाहे अजर अपना, नोते ही मिनहा हम देते हैं उसको उसी में से, आता योति देना बाबे फाल, नोती हम देंगे, ऊती नोती, और फिर मन शर्तिया की वजह से नोती की ये गिर गई, वो मजूम हो गया, नोते और हे साथ मफूल की है, नोते ही हम देंगे उसको, मिनहा उसमें से, मिनहा की मुराद जमीर दुनिया की तरफ जाती है, जो चाहेगा दुनिया का सवाब तो हम देंगे उसको वो सवाब, ही की जमीर सवाब के लिए, मिनहा उसी दुनिया में से, यानी उस दुनिया में ही, उसमें से ही उसे मिल जाएगा फल। वमन युरिद सवाब अल आखरत, और जो इरादा करेगा आखरत के सवाब का, आखरत के अजर का। आखरत भी असल में तो सिफत है और दुनिया भी सिफत है। दरअसल वहां भी था मन युरिद सवाब अल हयात दुनिया, सवाब अल हयात दुनिया, और यहां भी है वमन युरिद सवाब अल हयात अल आखरा, अद्दार अल आखरा, अल हयात अल आखरा, कोई वो मौसूफ माजूफ है। बहरहाल उर्दू में आखरत और दुनिया दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम तर्जमा कर सकते हैं जो चाहेगा आखरत का सवाब। नोते ही मिनहा उसी तरह से मजजूम है, वही ही है, वही मिनहा है। अलबत्ता यहां हा की जमीर आखरत के लिए है और वो दुनिया के लिए था, दोनों ही मुअन्नस हैं। तो जो आखरत का सवाब चाहेगा देंगे हम उसमें से ही, शर्त और जवाब शर्त मजजूम है दोनों फिक्रों में। वसना जिश शाकिरीन, और हम जरूर जजा, हम अनकरीब जजा देंगे शुक्र करने वालों को। शाकिरीना शुक्र करने वाले, शुक्र गुजार लोग, इन्होंने किया है एहसान मानने वालों को। और जो कोई चाहेगा बदला, बदला तर्जमा किया सवाब का, ठीक है, अजर का तर्जमा बदला भी हो सकता है, उसमें से हम देवेंगे हम उसको, वो देवेंगे तो वही नोते ही का तर्जमा है, बिल्कुल ठीक तर्जमा है। और हम सवाब देंगे वसनजी, बदला देंगे सवाब देंगे, क्योंकि जजा यजी में असल अच्छा बुरा बदला दोनों मायनों का यानी मफहूम होता है। वो फिर इबारत या उसके अल्फाज या कंटेक्स्ट बताता है कि यहाँ इनाम की बात हो रही है या सजा की बात हो रही है, क्योंकि कुरान करीम में जजा यजी सजा के लिए भी आया है, खुद उसका मायना तो बदला देना है, अच्छा हो या बुरा हो। वो या उसमें अल्फाज होते हैं अच्छे बुरे के, या जैसे यहाँ आ रहा है शाकिरों को देंगे, तो साफ ज़ाहिर है यहाँ सजा या बुरा बदला मुराद नहीं, अच्छा बदला ही मुराद है। वकअय्यिन मिन नबीयिन, कअय्यिन पे बात पहले हो चुकी है कि ये कम मिन नहीं होता है, कम खबरिया के मैंने देता है, और इसके साथ मिन लाजमन इस्तेमाल होता है। कम के साथ तो खैर नहीं भी इस्तेमाल होता, कम इस्तेफामिया भी हो जाता है, तो ये कम खबरिया का मायना देता है मिन, इसलिए इस पर लाजमन लगता है। कअय्यिन मिन लिखने की भी बात की थी कि नून के बगैर ये से भी लिखा जा सकता है, मगर कुरान करीम में नहीं। कअय्यिन मिन नबीयिन, कितने ही नबी थे, यूं तर्जमा होगा मिन नबीयिन, वो कअय्यिन की तमीज उस तरह से आई है। कअय्यिन मिन नबीयिन, कितने ही नबी थे, वाहिद आता है लेकिन इसमें मफहूम कसरत का होता है खबरिया में। कातला माहू के, जिसके साथ मिलकर लड़े, कातला लड़े मिलकर, ये कातला कुरान करीम में काफ्ते लाम से ही लिखा जाता है इस मौके पर, इसलिए कि इसकी एक किरात है कोतेला, मारे गए कत्ल हुए, तो वो उसकी गुंजाइश भी इसमें रहती है। हमारी यहाँ जो हफ्स की किरात है उसमें कातला ही पढ़ा गया है। लड़े वकअय्यिन मिन नबीयिन कातला, कातला वाहिद आया है, हालांकि वो मायना तो है कितने ही नबी थे जो लड़े, तो कातलू होना चाहिए था, लेकिन चूंकि लफ्ज वाहिद है मिन नबीयिन, उसके एतबार से फेल वाहिद आया है। तर्जमे में सेंस जमा की है, कितने ही नबी थे जो के लड़े, माहू उसके साथ, वैसे कातला नबियों के लिए नहीं है कि नबी लड़े, आगे इसका फायल आ रहा है। रिब्बियून, रिब्बियून लड़े, कातला माहू, वो जो जिन्होंने कोतेला किया है उन्होंने भी फिर इसको नायब फायल बना लिया है कि मारे गए कितने रिब्बियून। अगर ये यूं पढ़े ना कात का अय्यम नबी कोतेला माहू रिब्बियून, बन तो जाता है, तो इसलिए वो लिखा उसी तरह से गया अलिफ के बगैर। दूसरी किरात की गुंजाइश भी है, इसकी भी है। तो कितने ही नबी थे कि लड़े उनके साथ मिलकर, मिलकर हम कर रहे हैं माहू का तर्जमा, अगर हम करें ना उनसे लड़े तो ये गलत हो जाता है, उनके साथ लड़े भी करें ना तो भी बन जाता है कि गुआ के उनके खिलाफ लड़े, हालांकि तर्जमा माहू उनके साथ मिल के लड़े, यानी दुश्मन कोई और है जिससे लड़ रहे हैं। कितने ही नबी थे जिनके साथ मिलकर लड़े, रिब्बी यूना कसीरुन, बहुत से रिब्बी, यही हुआ तर्जमा, یہ ہے لفظ ربیونا. بعض کہتے ہیں اس کا تعلق ربتن سے ہے, اور ربتن کے معنی اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے یا اونچائی, اور اس لحاظ سے ربون ربیون کا معنی بنتا ہے اعلیٰ رتبے والے اعلیٰ مرتبے والے. یہ بھی ایک کہ ربا کا ترجمہ اور بلکہ ربا اور پھر اس کو ربیون دوسری قراتوں میں پڑھا گیا ہے, تو ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے. اور ہے یہ جمع سالم عربی کی ربیونا ربیینا اس طرح. رب سے اس کا تعلق رب والے اگر ہوتا تو پھر ربیون ہونا چاہیے تھا, جیسے قرآن کریم میں ربانیون آیا ہے الاحبار والربانیون, وہ تو صاف عربی لفظ معلوم ہوتا ہے رب والے. تو کیا یہ ربیون بھی اسی طرح سے ہے اور زیر پڑھنے کا ایک طریقہ ہو رب والے ہی اس کا معنی ہو, اور یا شاید شاید والی بات ہے کہ یہودیوں کی اصطلاح ہے ربائی, وہ کوئی عبرانی زبان کا لفظ ہے, ان کا جو سنگاگ کا پڑا مولوی ہوتا ہے یا خطیب جو کچھ بھی کہے اس کو ربائی کہا جاتا ہے انگریزی میں, تو وہ کوئی عبرانی لفظ ہے. تو کیا یہ وہ اس ربائی سے اس کا کوئی تعلق ہے, یعنی بڑے ایمان والے لوگ اہل علم وہ نبیوں کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑے, شاید یہ بھی گنجائش ہو. انہوں نے اسی لیے ترجمہ کیا ہے ربی یونا خدا کے طالب, گویا کہ لفظ ربی یونا ہی کے معنوں میں لیا ہے, اگرچہ قرات میں کہیں یہ آیا بھی ہے ربی یونا, لیکن اکثر قرات رہے کی زیر کی ہے, اور جنہوں نے زیر کو لیا وہ کہتے ہیں اس کا تعلق ربتن سے ہے, اور ربتن عربی میں بلندی یا بلند مرتبے کو کہتے ہیں, تو گویا کہ بلند مرتبے والے اچھی شان والے لوگ. کثیرن یعنی ربیون کثیرون ہونا تھا واحد سے اس کی کر لیا ہے, قاتل معاہ ربیون کثیرن. اب یہ بھی ایک عجیب اعراب ہے کہ اگر اس کی صفت ہے تو یا تو کہیں کثیرتن, لیکن وہ غیر عاقل کی تو نہیں ہے, کثیرتن تو نہیں ہونا چاہیے, پھر کثیرون ہونا چاہیے. کثیرون جمع عربی میں مستعمل ہے, تو اس لحاظ سے یہ کثیر ہونا عجیب لگتا ہے ربیون کثیر, اس کو واحد سمجھ کے یا کثیر منہم کچھ معذوف ہے, لڑے اہل خدا والے ان میں سے اچھی خاصی اکثریت تھی گویا کہ, تو اس طرح سے کثیر ان یا کسی معذوف کے ساتھ ہے یا پھر غیر معمولی طور پر اس کے ساتھ صفت واحد آئی ہے, اور یہ وہ چیز ہے جو عام قاعدوں سے ہٹ کے ہوتی ہے کہ ربیون کثیرن بظاہر صفت موصوف میں ایک فرق آ گیا ہے, موصوف جمع ہے اور صفت واحد ہے, لیکن یہ بھی ایک استعمال ہے قرآن کریم کا, بعض اس کو معذوف مانیں گے کہ کثیرن کے بعد کوئی اور لفظ معذوف ہے وغیرہ. فما وہنو پس وہ ڈھیلے نہ ہوئے, ابھی آپ نے لاتاہنو پڑھا تھا, لڑے اپنے نبی کے ساتھ مل کر دشمنوں سے, بڑے بڑے نیک لوگ بہت سے ایسے ہوئے ہیں, فما وہنو وہ ڈھیلے نہیں پڑے, کمزور نہیں ہوئے, بودے نہیں ہوئے, انہوں نے بزدلی نہیں دکھائی, لما اصابہم اس چیز کے لیے جو ان کو آ لگی, اصابہم ان کو سیدھی آ لگی, اصابہ یوسیب و نشان پن لگنا, اس چیز کے لیے یعنی اس کی وجہ سے وہ ڈھیلے نہیں پڑے جو ان کو آ لگا فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں, یعنی اللہ کی راہ میں ان کو جو مصیبت پہنچی اس کی وجہ سے انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی, نہ ہارے کچھ تکلیف پہنچنے سے. تکلیف پہنچنا مصدر کے ساتھ ترجمہ کیا کیونکہ ما مصدریہ بھی ہوتا ہے, لما اصابہم یعنی لے مصیبتہم, ان کو جو راہ خدا میں پہنچا نشان بنا جس کا, اس کی وجہ سے وہ کمزور نہیں ہوئے, وما ضع وہ تو تھا بودے نہیں ہوئے, ہمت نہ ہاری, سست نہیں پڑے, وما ضعفوا اور نہ وہ کمزور ہوئے, وما استکانوا اور نہ وہ دب گئے, ترجمہ انہوں نے کیا ہے وہ بھی وہی کمزوری سے دب جانا, استکانہ کان یکونوں سے ہی باب استفعال ہے, استکانہ یستکینو استکانتن, اور اس کے معنی ہیں دب جانا وہ بھی بزدلی یا کمزوری کی وجہ سے, ہمت ہار جانا, ان تینوں لفظوں کے معنی گویا کہ سست ہونا, کمزور ہونا, ہمت ہار جانا, دب جانا, سارے قریباً ہم معنی الفاظ ہیں, اور مختلف لفظ لائے گئے ہیں ایک زور پیدا کرنے کے لیے، وما وہنو وما ضعفو وما استکانو، مترادفات سے عبارت میں زور پیدا ہوتا ہے، نہ یہ کیا نہ یہ کیا نہ یہ کیا، اور حالانکہ تینوں لفظ ہیں ہم مانا، بزدلی نہ دکھائی، کمزوری نہ دکھائی، تو تین دفعہ ایک لفظ کو ریپیٹ کرنے کے بجائے تین لفظ قریباً ہم مانا وہ لائے گئے ہیں، اس سے ایک عبارت میں مترادفات کے استعمال میں خوبی ہوتی ہے. بعض دفعہ مقررین کو یہی سنتے ہیں کہ تقریر میں یہ نہ یہ نہ یہ نہ، پھر وہ اس میں اخبار حسن پیدا ہوتا ہے، اور بعض لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ مولوی صاحب چار منٹ تو ایک لفظ پھر دوسرا پھر تیسرا، وہ ہم مانا ہی دہراتے رہتے ہیں. استکانو کاف واو نون سے باب استفال، اور نہ ہی وہ دبے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ پسند کرتا ہے بہت ثابت قدم رہنے والوں کو. وما کان قولہم، جی یہ ختم کر ہی لیں سوال کا. وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخری آیت یہ رہتی تھی، وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، صدق اللہ العظیم. اس میں یوں چندہ کوئی مشکل عبارت نہیں ہے، لیکن ایک اعراب قابل غور ہے کہ وما کان قولہم نہیں کہا، وما کان قولہم کیوں آیا؟ اگر یہ کانا کا اسم ہوتا، وما کان قولہم، نہیں تھی نہیں تھا ان کا قول، نہیں تھی ان کی بات، اور آگے اللہ کے بعد اس کو خبر بنا لے، کچھ گنجائش نکلتی تھی، لیکن یہ الٹا خبر کے طور پر نصب پہلے آ گئی ہے. اگر یہ خبر ہے تو پھر اگلا سارا فکرہ ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یہ سارا جو ہے یوں اس کے سوا نہیں تھی بات ان کی، گویا کہ قولہم کو خبر بنا دیا ہے. یہ چیز جو آگے کہی ہے یہی تھی ان کی بات، یعنی قالوا ربنا اغفر لنا وغیرہ وغیرہ، کانا قولہم، یہ سارا یعنی کانا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا قولہم، یوں بات بنی کہ یہ ساری بات ان کی بات تھی، اور پہلے آ گیا ما اور الا نہیں تھی یہ، مگر ان کی یہی بات تھی، اس کے سوا انہوں نے اور کچھ نہیں کہا. تو قولہم کا اعراب قابل غور ہے کہ وہ رفع میں نہیں آیا، اگرچہ بعض قراتوں میں رفع میں آیا ہے لیکن نصب میں آیا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ سارا ان قالوا ربنا اغفر لنا، ان قالوا کے میں نہیں ہے قولہم، ان قالوا میں ان مصدریہ ہے. وما کان قولہم یعنی یہ ربنا اغفر لنا، اس کے سوا ان کا کوئی قول نہیں تھا، یہی بات انہوں نے کہی تھی. تو اس طرح سے کانا کا اسم تو یہ پورا جملہ بنتا ہے کہ یہی تھا ان کا قول اور نہیں تھا. کانا ربنا اغفر لنا ذنوبنا قولہم، اور وما کانا الا کذالک قولہم، یہ بات ہی ان کا قول تھی، یعنی اس کے سوا انہوں نے اور کچھ نہیں کہا. جو صبر کرنے والے اور جن کا اوپر ذکر ہوا ہے کہ جب کافروں سے لڑتے تھے تو ان کے منہ پر یہی بات ہوتی تھی اور کوئی نہیں ہوتی تھی، وہ کیا کہ ان قالوا، وہ یہ کہتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب، ربنا منادا مضاف ہے، اغفر تو بخش دے معاف کر دے، لنا ہم کو ذنوبنا ہمارے گناہ، غفر یغفر کا پہلا مفعول ذنوب ہے جو نصب میں آیا ہے جو اصل معاف ہوتا ہے، اور جس کو معافی ملے اس کے ساتھ لام کا صلہ آتا ہے. اغفر لنا ذنوبنا یعنی اغفر ذنوبنا لنا، ہمارے گناہ، ذنب ان کی جمع ہے ذنوب، ہمارے گناہ معاف کر ہم کو، وہ اسرافنا یہ اغفر کا دوسرا مفعول ہے، ہمارا اسراف معاف کر، وہ بھی نصب میں ہے، اسراف اسرف یسرف و اسراف، حد سے بڑھنا کسی معاملے میں بھی، اور ہماری جو زیادتی ہوئی ہے اسی لیے انہوں نے ترجمہ زیادتی کیا ہے، ظلم و زیادتی، اسرافنا ہمارا بڑھ جانا حد سے، فی امرنا اپنے معاملے میں، یعنی اپنے معاملات میں ہم نے کہیں حدوں کو پھلانگا ہے، خدا کی حدیں ہی مراد ہوں گی، حد اعتدال کو توڑا ہے، कानून की हदों को तोड़ा है वो सब इसराफ है। फी अमरना अपने मामले में हमसे जो कोताही हुई है ये ज्यादती हुई है। वह सभ्य तकदामना और पक्के रख हमारे कदम। सब्बत यु सभ्य तो तस्बीतन पक्का करना साबित करना। अकदामना उसका मफूल है कदम की जमा है। हमारे कदम पक्के कर दे यानी हमें साबित कदम रख सीधा तर्जमा हो सकता है। साबित रख कदम हमारे उर्दू में बल्कि कहते हैं साबित कदम हमें कर दे। वंसुरना और हमारी पूरी पूरी मदद कर आला मुकाबले पर अल कौमिल काफिरीन काफिर लोगों पर। नासरा आला कजा फलान उसकी उसके मुकाबले पर मदद की उसको इतनी मदद दी कि वो जीत गया। तो वंसुरना अल कौमिल काफिरीन मदद दे हमको काफिरों के मुकाबले पर। और फिर मैंने बनता है कि हमको उन पर फतह अता फरमा ये असल मनम है ये बनता है यानी हमारी इतनी मदद करके हम फतह पा ले उन पर। नसर का मैंने ही होता है तो ये तर्जमा कि हमारी मदद फरमा उनके मुकाबले पर यानी उन पर हमें गलबा दे। फ़ाताहुमुल्लाह बस अल्लाह ने उनको अता किया। आता योती आता का पहला मफूल हुम दूसरा है सवाबत दुनिया। आता के हमेशा दो मफूल होते हैं। अल्लाह ने उनको दिया दुनिया का सवाब अजर बदला। वह हुसना सवाब आखिरा और आखरत के सवाब की खूबी अता फरमाई। लफ्जी तर्जमा तो ये बनता है हुसना सवाब आखिरा आखरत के सवाब की खूबी। फिर मफहूम होगा आखरत का अच्छा बदला यानी यहां भी उन्हें अजर दिया और आखरत का बदला अच्छा दिया खूब दिया। इन मानों में है हुसन सवाब आखरा आखरत और दुनिया। यहां असल में तो सिफत है इससे पहले एक मौसूफ माजूफ है सवाबा सवाब अल हयात दुनिया व सवाब अल हयात आखरा क्योंकि असल तो मौसूफ एक आना चाहिए था। तो आखरत तो सिफत है किसी चीज का नाम इन मानों में नहीं है सिफत है तो इस लिहाज से। लेकिन उर्दू में चूंकि दुनिया और आखरत के लफ्ज अब इस्तेमाल होते हैं लिहाजा दुनिया का तर्जमा करना अद्दारुद्दुनिया या अलहयातुद्दुनिया नज़दीक वाली ज़िंदगी और अलहयातुल आखिरा आखरत पे आने वाली ज़िंदगी या घर उसकी ज़रूरत नहीं रहती। हम आखरत और दुनिया लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल करते और उसका वही मफहूम है जिस तरह से वो कुरान करीम में आया है। और हमने अल्लाह ने उनको दिया दुनिया का अजर भी और आखरत का बहुत अच्छा अजर भी हुस्न वैसे लफ्ज मैंने तो खूबी किया है सवाब की खूबी। वल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन और अल्लाह ताला पसंद फरमाता है एहसान करने वालों को। अहसन एहसनों से इसम फाइल है मुहसिनीन और इसके मैंने होते हैं भलाई करना। एक मैंने है दूसरे के साथ भलाई करना और एक मैंने ये भी है कोई भी काम बड़े अच्छे तरीके से करना उस आदमी को भी मुहसिन कहेंगे। नमाज पढ़ना बहुत अच्छे तरीके पर कोई शरई काम करना बहुत अच्छे तरीके पर लोगों से मामलात निभाना बहुत अच्छे तरीके पर अपना काम जो जिम्मे है जिसके पैसे मिलते हैं उसको करना बहुत अच्छे तरीके पर। ये जमात इस्लामी के हराम खोरों की तरह कि जो उनका लेक्चरर है वही क्लास नहीं लेता कम वक्त और कहते हैं जी हम तो नेकी करते हैं इश्तिहार लगाते हैं जमात इस्लामी। तो एहसान के मायने हैं जो काम करना अच्छे तरीके पर करना इत्कान के मानों में ये माना भी इसमें आता है। नहीं वो यूं ही मेरी जुबान पर आ गया ऐसे हैं। एक हमारे शागिर्द हैं बीए में इस्लामी कॉलेज में पढ़े थे एफसी कॉलेज में अरबी के लेक्चरर उनको मशहूर किस्सा कभी क्लास नहीं लेते और एक दफ़ा सोए हुए पकड़े गए छापा मारा चो बहुत भी शिकायत हुई तो कोई आ गई पार्टी वहाँ से ठीक पीरियड में उन्हें क्वार्टर से सोए हुए पकड़ा और उनसे जब पूछा गया कि आप क्यों नहीं क्लासे लेते कहते जी हम खिदमत इस्लाम करते हैं क्लासे लेने की क्या जरूरत है तनख्वाह उस काम की लेते हैं और खिदमत इस्लाम करते हैं। क्या खुद साख्ता तसव्वुर लोगों ने मैं कहता हूँ आज के ज़माने में वलीउल्लाह वही है जो हलाल की रोज़ी खाता है ये कोई छोटी बात नहीं है। सब हराम खोर ऐसे ऐसे देखे हैं इधर जमात इस्लामी में पीपल पार्टी से ज़्यादा हराम खोर है और हमारे दोस्त हैं वाकिफ है जिनका पता है पूरा साल क्लास नहीं पढ़ाई एमए की और आखिर वक्त पे सिलेबस कटवा दिया। इनका असर तो होता है उस उस्मान गनी को फिर किसी ने भी नहीं पकड़ा कोई इंक्वायरी नहीं हुई क्योंकि इनके प्रेशर है पॉलिटिकल सब छोड़ छाड़ दिए। तो पूरा साल क्लास नहीं पढ़ाई यूनिवर्सिटी में यह होता है कि आप कोर्स ऐड नहीं कर सकते, दो साल पहले नोटिस देना पड़ता है, उमिट कर सकते हैं, आखिर वक्त पे कहें जी ये जितना सिलेबस है इसमें से आधा गया, तो उन्होंने क्लास ना पढ़ाई, आखिर पे यूनिवर्सिटी में जाके मसलन 100 हदीसें थी कोर्स में, 40 रखी 60 कटवा दी, पढ़ाई वो 40 भी नहीं थी, लेकिन तालिब इल्मों को कहा कि यही 40 याद कर लो। और मजे की बात है, जहां दूसरे कॉलेजों में एमए हो रहा था मसलन इस्लामाबाद में और कहीं, उन बेचारों को पता ही नहीं ये तब्दीली हो गई है, वो सारा ही कोर्स पढ़ पढ़ के और पढ़ा के मर गए, और यहाँ के जमात इस्लामी वालों ने ये कर लिया। तो इस तरह की हरामखोरी भी करते हैं। बहरहाल ये तो वो चीज़ें जो चंद एक हमारे मुशाहदे में, और अल्लाह बेहतर जानता है। हम ये कह रहे थे कि एहसान का एक माना है, और हदीस में इस मफहूम का बहुत कुछ इबारतें आई है कि जो काम करो भले अच्छे तरीके पर करो, जूते की मुरम्मत भी करते हो तो ईमानदारी से करो। मिस्र के किसी आलिम से किसी ने पूछा था कि जी अगर एक आदमी कुरान इस्लामियात पढ़ाए, अरबी पढ़ाए और रोजी कमाए, और दूसरा कोई और काम करता है, तो क्या इसमें भी कोई फजीलत होती है कि इसने इस्लाम पढ़ाया और दीनी किताबें पढ़ाई और पेशा ये बना लिया? तो उस आलिम ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। उसने कहा था फी नफ्सी, पेशे के लिहाज से कोई उसको अजर नहीं है, अगर वो किताबें दीन कुरान इस्लाम पढ़ाता है पैसे लेता है, और दूसरा जूते गांठता है, अगर जूते गांठने वाला इखलास और कोशिश और मेहनत से जूते गांठता है, वो इस मौलवी से बेहतर है जो हरामखोरी कर रहा है और शायद टरखा रहा हो क्लास को और जो कुछ कर रहा हो। तो बात असल में काम में ईमानदारी का जज्बा कितना शामिल है, और उसको परफेक्शन और बड़े आला तरीके पर करना, इसको अरबी में कहते हैं अहसन युहसन, अहसन अल अमल। फिर अगर उसको ले तो जौहरी एक मुफस्सिर हैं, उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें, बल्कि शायद ज़मख़शरी ने भी बयान किया है कि एहसान फिल मुआमलात, एहसान फिल इबादात, इस तरह से इबादात में एहसान के रोज़ा नमाज ज़कात बड़े अच्छे तरीके पर ठीक ठाक उसको अदा किया जाए, एहसान फिल मुआमलात लोगों के साथ मामले जो है सही सच्चाई और एहसान और खूबी के साथ करना, और बल्कि एहसान फिस सनात इंडस्ट्रियल ईमानदारी कि चीज़ बनाओ पायदार बनाओ सही बनाओ ईमानदारी से बनाओ। लेकिन यहाँ तो ये समझते हैं यार कोई चीज़ अगर पायदारी बनाई तो, किसी अंग्रेजी किताब में पढ़ा था कि ये तो अपनी ट्रेड से खद्दारी है, पक्की चीज बनाओगे 20 साल हुई नहीं जाया होगी, फिर आगे कारखाने लेके बैठे रहो, लिहाजा कच्ची चीजें बनाओ जो 6 महीने के बाद टूट फूट जाए और फिर हमारी चीज चलती रहेगी और बिकती रहेगी। यानी इंडस्ट्रियल एहसान की बजाय उसमें यह किया जाता है। तो एहसान का लफ्ज मुफस्सरीन ने लिखा है कि अरबी जुबान के लिहाज से किसी काम को निहायत खूबी के साथ करना, यह मोमिन की खूबी है। जो काम भी उसको दिया जाए, मजदूरी हो या पढ़ाना हो या जो भी हो, वो बड़ी उम्दगी से करे, उसमें उसकी इबादत भी आती है, उसके मामलात भी आते हैं, उसकी सनत और हरफत भी आती है, उसकी ज़रात भी आती है, सब कुछ आ जाता है। बहुत वसी लफ्ज़ है, और मुसलमान की खूबी है कि वो अपना काम नहायत अच्छा। ये तुम्हारे जैसे गधे कि पढ़ते ही नहीं मेहनत से, और मेहनत करो लगा दो सारा जोर के जो कुछ पढ़ रहे हैं उसको याद करना, माँ बाप का पैसा हलाल करो, तुम कोई थोड़े हराम खोरो जमात इस्लामी से भी बढ़ के हो कि माँ बाप पैसा लगा रहा है कॉलेज जो है वो इतना कर रहा है और तुम्हारा बस कोई परवाह नहीं। ये सारी बातें हमने वो एहसान के पेशे नजर कही है कि एहसान मुसलमान की खूबी है, जो काम भी करे वो हुनर से करे, मेहनत से करे, पूरा जोर लगा के ईमानदारी से उस पर तवज्जो दे के करे। तो इसलिए ये जो हम आमतौर पर इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन नेकी करने वाला तर्जमा कर लेते हैं, सिर्फ इतनी बात सच्ची बात है नहीं है, वो तो अहसाना के साथ इला का सिला आए तब मैना है किसी के साथ हुस्न सलूक करना। मसलन कहेंगे अहसाना इलैह, लेकिन अगर कहें अहसाना अल अमला तो अब इसके मैंने नहीं कि उसने काम से भलाई की, हाँ काम से भलाई की इन बहुत अच्छे तरीके पर किया। अहसाना अमलहु यानी अतकानहु, इतकान भी कुरान में इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल ग़ज़वा अहज़ाब की आगे कुछ आयते हैं, इम्तिहान आपका यहां तक हम लेंगे 127 सफ़े तक पिछली सारी किताब में से। क्या हो गया है? ग़ज़वा बनी कुरैज़ा और यहूद मदीना के इस 30 साल की बात है। इस 30 साल अलिफ स्वाद लाम मादा जिसके माने होते हैं असलुन जड़, और असलुन की जमा है उसूल, उसूल मैंने जड़े, तो इस असल से हमजा सीन स्वाद लाम से वर्ब है इस्ता असला यस्ता असलो इस्ते सालन, इसको हम कहेंगे इस्ती साल, क्योंकि ते में जो हमजा है वो ती पढ़ा जा सकता है, लाजमी नहीं है। लेकिन अगर वाव स्वाद लाम से हो वसला यसलो से इस्तौ सला यस्तौ से लो, उसका भी मस्दर इस्तिव साल बनेगा और वो लाजमन इस्ती साल हो जाएगा। तो इस्तौ सला यस्तौ से लो को मैंने होता है मिलाना, दो चीजों को मिलाते चले जाना, और इसी से ई साल, और ये भी इस्ती साल, मगर वो जो वाव वाला है वो लाजमन इस्ती साल करना पड़ता है क्योंकि वो फेल बनता है इस्तिव साल, और ये इस्ते साल है इसको ये में बदलना लाजमी नहीं है। आप इस्ते साल भी पढ़ सकते हैं, जैसे इत्मीनान इत्मीनान भी पढ़ते हैं और इत्मीनान है असल। तो ये इस्ती साल के मैंने होते हैं, इस हमजे वाला हो तो इसके मैंने जड़ उखेड़ देना, क्योंकि असल मैंने होता है जड़, इस्ता साला यस्ता से लो, उसने उसकी जड़ उखेड़ दी। तो बनी कुरैजा वाला गजवा और यहूद मदीना का इस्तेसाल, उनकी जड़ उखड़ जाना, ये आपने सीरत में वाक्य पढ़ा होगा। यहूद मदीना के तीन कबीले थे मदीना में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद कोई मुआहदे वगैरह हुए थे, फिर इन्होंने खिलाफ वर्जी की, वो दो कबीले आहिस्ता आहिस्ता वो वाश आउट एक तरह से हो गए, बनु कैनुका और बनु नज़ीर। फिर ये एक कबीला था मदीने के जुनूब में, अब भी एक छोटी सी पहाड़ी है जिसे जबल कुरैजा कहते हैं, वहाँ को खंडरात वगैरह इनके हैं मौजूद, वहाँ इनकी बस्ती थी। और जंग खंदक में जबकि मुसलमानों ने शिमाली तरफ से खंदक खोद कर अपना दिफा किया था, और उधर फौजें थी बड़ी को 20,000 के करीब कुरैश लाए थे आदमी, और वो भी यहूद खैबर ने इधर उधर के कबाइल को इकट्ठा किया था कि वहाँ चढ़ेंगे, जो 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 लूट मार होगी वो तुम्हारा होगा सारा हिस्सा। तो वो कबीले लूट मारी करने वाले थे, आ जाते थे, हुकूमत तो उस जमाने में होती नहीं थी, तो बनु गतफान वगैरह, तो शुमाल से इतना ख़तरनाक था। तो फिर ये जुनूब में ये कुरैजा रहते थे, इनसे उन्होंने कंटेक्ट किया और ये जुनूब से हमला करने और मुसलमानों से गद्दारी करने पर तैयार हो गए थे। वो बहुत सी तफसीली वाक़यात हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी वो एक वक्त ऐसा आया था कि ऊपर नीचे से इतना ख़तरा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा कि अब सिवाय दुआ के और कोई सूरत नहीं है, तुम भी दुआ मांगो और मैं भी दुआ मांगू। फिर वो अल्लाह ताला ने हालात पलट दिए, फिर इनको उस गद्दारी की सज़ा मिली थी कि जितने इनके आदमी हैं वो सब कत्ल कर दिए गए थे, औरतें बच्चे सब लौंडे गुलाम बना के इधर नजद की तरफ के बेच दिए गए थे। ये वो बनु कुरैज़ा का इसमें है, वो तफसील आप किताबों में पढ़ सकते हैं कि वो फैसला क्यों हुआ उनको मारने का। और ये वो तो उसकी तरफ इशारा है कि मुसलमानों पर क्या सख्त वक्त वो आ गया था कि दोनों तरफ से घिर गए थे मौत में, ऐसे मालूम होता था कि अब कोई बचने की सूरत नहीं है। बहुत से वाकयात है इसमें बहरहाल उसका हवाले से, और वो जो कैफियत मुसलमानों की थी वो एक आयत में यहां बयान हुई है, हुनाल कबतुलियल मुमिनून वज़ुलज़िलु ज़िलज़ालन शदीदा। ये वो वक्त था जब मुसलमान सख्त आजमाइश में डाले गए और बिल्कुल हिला के रख दिए गए, ये आगे भी अल्फाज आएंगे कुछ। तो उस सूरत अल अहज़ाब का ये दूसरा रुकू यहाँ से शुरू होता है जिसमें इसकी तरफ इशारा है, और फिर तीन रुकू हैं गालबन जिनमें ये बात हुई है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, उज़्कुरू नेअमत अल्लाह अलैकुम, याद करो अल्लाह की नेमत को जो तुम पर हुई, अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो। असल में है यानी नेअमत अल्लाह अल्लती अनअमा अलैकुम या अनअमा हा अलैकुम, यूं आएगा ना, अलैकुम का ताल्लुक तो यूं होगा, उज़्कुरु नेमत अल्लाह हिल्लती अनअमा हा अलैकुम, वो दरमियानी फिक्रा उड़ा के नेमत अल्लाह अलैकुम कहा है, उज़्कुरु का मफूल है नेमत अल्लाह, याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो तुम पर थी, यानी जो अल्लाह ने तुम पर नेमत की इनाम दिया, इज जब के जाअतकुम जुनूदुन, जा आए तुम्हारे पास लश्कर, यानी तुम पर चढ़ के आए, जा अहू उसके पास आया, जा अतकुम जुनूदुन जमा मुकसर है इसलिए जात फेल मोनस आया है, जा अतकुम जुनूदुन, तुम पर आए, तुम्हारे पास आए कुछ लश्कर, जुनदुन जुनूद उनकी जमा है। फअरसलना, वो जुनूद कौन से थे, वो तारीख से पढ़े तो मालूम होता है ना कि वो बनू गतफान को खैबर के यहूदी लाए थे, कुरैश लाए थे अपने अपने वो। फअरसलना अलैहिम, बस हमने उन पर भेजा। अरसलना पढ़ चुके हैं आप रेसी लाम से बाबे फाल, अरसल युरसल इरसाल, खुला छोड़ देना, भेजना। हमने उन पर भेजे रीहन, एक हवा। उन पर भेजे या भेजा या भेजी कर ले, रीहन अरसलना तो उस उर्दू में तो यही करेंगे ना, अरसलना में तो हमने भेजे तो वही फेल आना, उसमें तो मुज़क्कर मुअन्नस की कोई नहीं ना। हमने भेजे उन पर रीहन, एक हवा, इसलिए उर्दू में तर्जमा करेंगे, हमने भेजी उन पर एक हवा, रीहन हवा। व जुनूदन, और कुछ लश्कर भेजे, ये भी मफूल है अरसलना का, यानी अरसलना रेहंग व जुनूदन अलैहिम, हमने भेजी हवा और कुछ लश्कर उन पर, यानी उनके खिलाफ। और जुनूदन के बाद है जुनूदन लम तरौहा, जुनूद नकरा मौसूफा हो गया है। रेह तो खैर देखी थी कि आंधी आई, लेकिन वो लश्कर कौन से थे जो भेजे, आदमी तो नहीं आए थे, इसलिए कहा जुनूदल लम तरौहा, ऐसे लश्कर जो तुमने नहीं देखे, यानी तुम्हारी नजर से बाहर थे, फरिश्ते थे, क्या चीज थी, अल्लाह के जुनूद तो वो ही जानते हैं, जानता है। कुरान में आता है वमा यालम जुनूद रब्बिका इल्ला हू, अल्लाह ही अपनी फौजों को जानता है कि कहां कहां और किस किस्म की है। तो लम तरौहा रा यरा से है, लम तरौहा लम तरौना था, लम की वजह से नून गिरा, लम तरो हा, हा की जमीर जुनूद के लिए है। ऐसे लश्कर भेजे जिनको तुमने नहीं देखा, तुमने देखा ही नहीं था। वो हवा का किस्सा तो ये है कि ये इन्होंने को 15-20 दिन मुआसरा किए रखा था, और फिर उसमें नाकाम रहे मदीने पर, वो खंदक तो न पार कर सके। तो फिर ऐसा हुआ एक दिन रात को, रात के वक्त, कि अल्लाह ताला ने इतनी ज़बरदस्त आंधी भेजी कि इनके जो खैमे वगैरह वो लगे हुए थे, खैमों में ही रह रही थी फौज, वो खैमे उखड़ गए, हांडियाँ रखी हुई थी खाना पकने के लिए, वो चूल्हों से उड़ के कहीं जा पड़ी। एक ऐसा तूफान आया रातों रात, तो काफिर सारे लश्कर लेके, उन्होंने कहा ये तो पहले ही कुछ हाथ नहीं आ रहा, जाओ अब अपने अपने घरों को। सुबह मुसलमानों ने देखा तो सब मैदान साफ था, सब अपने घरों को चले जा चुके थे। वैसे भी अरब गुरीले जंग करते थे, आए हमला किया, लूट मार माल लिया, निकल गए। जम के 20 दिन उन्हें जब जंग करनी पड़ी अपनी रोटियां खा के, और हाथ भी कुछ नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा ये तो घाटे का सौदा, हमने तो ये समझा था जाएंगे आनन फानन मदीने को लूट लेंगे और कुछ हाथ आएगा, तो ये तो उल्टा 20 दिन से हम बैठे हैं रोटियां तोड़ रहे हैं अपनी, और फैसला भी कोई नहीं हो रहा। फिर वो आंधी उनको ले गई थी। तो उस आंधी वाले वाक्य की तरफ, जो आप सीरत की किताबों में पढ़ सकते हैं, उसकी तरफ इशारा है कि उन पर हवा भेजी और वो वाकई एक खुदाई अजाब था उनके लिए, और ऐसे लश्कर भेजे जो तुम नहीं देख सकते थे। यहां वो जाअतकुम जुनूदुन, उन्हीं कुरैश और उनके साथियों अलाइज जो उनके थे यहूदी और बनू गतफान वगैरह कबीले, उन्हीं की तरफ इशारा है। वकान अल्लाह बिमा तअमलून बसीरा, और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से को देखने वाला था, बसीर देखने वाला, तअमलून बिमा तअमलून यानी बिअमालकुम, वो खूब देख रहा था सब कुछ। इस जाऊकुम मिन फौकिकुम, उस वक्त को याद करो जबकि वो आए तुम्हारे पास, यानी तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए मुराद है, मिन फौकिकुम तुम्हारे ऊपर से, वमिन असफला मिनकुम और तुम्हारे नीचे से। फौक ऊपर पड़ा है तुमने लफ्ज, असफला सीन फे लाम से, असफल मैंने ज्यादा नीचे, और इसका मुअन्नस होता है सुफला, ये अफल तफजील का सीगा है, असफल और सुफला। नशेब को भी असफल कहते हैं, बदर के सिलसिले में आता है, वर रकबो असफला मिनकुम, काफला तुम्हारे नीचे से गुजर गया था, यानी नशेबी इलाके से गुजर गया था। तो असफला के मैंने नीचे, अखलाक के लिहाज से भी, घटिया आदमी को असफल कहते हैं। कुरान करीम में इंसान के बारे में आया है, सुम्मा रददना हो असफल साफलीन, अच्छी तरह इंसान को बनाया और फिर वह असफल साफलीन की तरफ उसको लौटा देते हैं। वह असफल साफलीन कई तरह का है, अमल के लिहाज से भी, उम्र के लिहाज से भी वगैरह। तो असफल के मैंने हैं सबसे पस्त, द लोएस्ट, ये इसका मैंने होता है। फिर लो होना ज़मीन के एतबार से भी है कि नशेबी ज़मीन, अखलाक के लिहाज से भी हो सकता है और कई लिहाज से भी हो सकता है। तो व मिन असफला मिन को, और असफल से जो तुम से था। अब देखिए असफला मिन कुम अफल तफजील है, तुम से नीचे, असल तो तर्जमा होगा ना ये असफला मिन कुम, और असफला गैर मुनसरिफ है इसलिए जब उसके पहले मिन भी लगाए तो जबर रही है, मिन असफलेन तो नहीं ना हो सकता, मिन असफला। और अगर पहले मिन को छोड़े थोड़ी देर के लिए तो असफलो मिन कुम, यानी फलां चीज हो वह असफलो मिन कुम, तुमसे नीचे है, तुम जरा ऊंची जगह पे हो वो तुमसे नीचे है, यही माना होगा, तुम्हारी निस्बत वो नीचे है, असफलो मिन कुम। फिर उस असफल पे मिन लगा, तुमसे जो नीचे है उधर से, उस तरफ से, मिन का मैंने जैसे कहें मिम मक्का था, मक्का की तरफ से, मक्का से मदीना तक, तो इन मनों में पहले मिन का मैना है उस तरफ से। असफल मिनकुम का मिन जो है वो अफल तफजील वाला मिन है जो मुकाबले के लिए आता है, तुम्हारी निस्बत जो नीचे था हिस्सा वहां से, तो इस तरह से मिन असफल मिनकुम का तर्जमा है, और नीचे से और मिनकुम का तर्जमा नहीं किया इन्होंने, क्योंकि ऊपर ऊपर जो कर लिया फौकुकुम तुम्हारे ऊपर से और नीचे से, तो नीचे से में उर्दू में तुम्हारे दोनों तरफ आ जाता है, अरबी में तो दोनों जगह आया ना, फौकुकुम और असफला मिनकुम, तो उधर फौकुकुम मिन असफला मिनकुम, वहां कुम दो दफा आया, उर्दू में एक दफा से काम चल जाता है, तुम्हारे ऊपर से और नीचे से, असल में तो था तुम्हारे ऊपर से और जो तुमसे नीचे है उससे, यूं बनता लफ्जी तर्जमा मिन असफला मिनकुम का, जो तुमसे नशेब में था वहां से, उस तरफ से लाया। तो ये ऊपर से और नीचे से सतह के एतबार से भी हो तो सकता है कि मक्का के शिमाल जनूब में वो सतह की जो लेवल है, लेकिन हकीकत यह है कि ये जिधर बनू कुरैज़ा थे असल में तो ये ऊंचा इलाका है, मदीना मुनव्वरा में जो बुलंदी है लेवल ज़मीन की वो ये है कि जुनूब की तरफ और मशरक़ की तरफ ऊंची है और मग़रब और शिमाल की तरफ नशेब होता है, यानी जितनी वादियाँ बहती हैं वो उनका रुख ये है कि वो मशरक़ की तरफ या फिर शिमाल की तरफ होकर बहती है, यानी मदीना मुनव्वरा का नशेबी इलाका उसके नॉर्थ में है, जुनूब में नहीं है। ये कुरैज़ा जुनूब में थे और वो जो आए थे फौजें लड़ने कुरैश के साथ मिलकर वो नॉर्थ में थे, तो इस लिहाज से नीचे ऊपर दोनों तरफ से जो ख़तरा पैदा हो गया था उसकी तरफ कुरान करीम में इशारा है कि नीचे से भी ख़तरा था ऊपर से भी ख़तरा था। और वैसे मुहावरे में भी ऊपर और नीचे कह सकते हैं कि दोनों तरफ से, मुहावरे में भी ऊपर से भी मुसीबत नाजल होना नीचे से भी, लेकिन एक्चुअली भी पोजिशन ये थी कि जो उसका नशेबी इलाका था उधर भी दुश्मन, जो उसका बालाई इलाका था उधर भी दुश्मन ने गद्दारी करने का प्रोग्राम बना लिया था, तो दोनों तरफ से मुसलमान घिर गए थे और सख्त खतरा पैदा हो गया था। वह इज ज़ागत अल-अबसार, जबकि टेढ़ी हो गई नजरें, और उस वक्त को याद करो जबकि टेढ़ी हो गई नजरें, ज़ाग यज़ीगो ज़ैगन टेढ़ा हो जाना, अबसार जमा है बसरुन की, नजरें टेढ़ी हो जाना, ये इंतहाई खौफ को जाहिर करता है मुहावरे में, इंतहाई खौफ हो तो आदमी को कुछ सूझता नहीं, मालूम होता है कि आंखों की नजरें खत्म हो गई है खौफ में, तो उसकी तरफ इशारा है जबकि आंखें टेढ़ी हो गई थी, इसी को इन्होंने कहा है जब फिरने लगी आंखें, टेढ़े होना उन मानों में लिया है। वह बलागतिल कुलूबुल हनाजरा, और दिल जा पहुंचे गलों तक, बलागा यबलों को पहुंचना, अलकुलूब उसका फायल है कल्ब, दिल जा पहुंचे, कुलूब जब मुकसर है बलागत आया है फेल, हनाया जीरा हे नून जीम रे, चार हरफी मादा है ये, رباعی ہے, زاغ یزیغ, زاغین یا زاغ یزیغ, زا یہ غین ہے, با یہ بھی ہو نہیں پڑا, تو زاغ یزیغ تو کہہ رہے ہیں ہم, پھر بھی نہیں پتا چلا کہ کیا ہے. وہ بڑے بدھو ہیں یا آپ بڑے بدھو ہیں؟ زاغ یزیغ کو آپ کہہ رہے ہیں غین کے بعد, یہ میں نے زغا یزغی کہا ہے. تو یہ تمہیں سمجھنے چاہیے, با یبی ہو دا یدی ہو یہ تم نے پڑھا ہے, تو زاغ یزیغ ہو ٹیڑھا ہونا, اور یہ تو میرے خیال میں سورت آل عمران میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا, وہ فی قلوبہم زیغ ان میں اور اس میں, تو زاغ یزیغ ہو ٹیڑھا ہونا, دل کا ٹیڑھا ہونا, نظر کا ٹیڑھا ہونا. قرآن کریم میں آتا ہے ما زاغ البصر, نگاہ ٹیڑھی نہ ہوئی, اور کہیں آتا ہے تزیغ قلوبہم, ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے. وہ منافقت کے بارے میں آیا ہے دسویں پارے میں. تو بلغت القلوب الحناجر, حناجر کا واحد ہے حنجرتن, اور مادہ ہے چار حرفی, حی نون جیم رے, اس سے ورب بھی حنجرہ یحنجرو استعمال ہوتا ہے, فعل لا یفعل لو آپ نے پڑھا ہے ربائی, اور اس کے معنی ہوتے ہیں ورب کے گلا کاٹنا. خنجر بھی اسی طرح کا لفظ ہے, وہ بھی چار حرفی ہے, یہ حے ہے. حنجرہ یحنجرو, حنجرہ تن, فعل لا تن گلا کاٹنا, حنجرہ تن گلے کو کہتے ہیں, یہ یہاں سے لے کر جو نیچے سینے تک کا درمیانی حصہ, اس کو حنجرہ تن کہتے ہیں گلا. خاص طور پر نرخرا جسے کہتے ہیں, جس سے ہوا اور خوراک کی نالی جو چلتی ہے, اس حصے کو حنجرہ کہتے ہیں. تو حناجر, نرخروں میں آ پہنچے دل, یعنی گلے میں آ پہنچے. بلغت القلوب الحناجر, دل آ پہنچے گلوں میں, گلوں تک. اور یہ دل کا گلے تک پہنچنا, یہ مطلب ہے کہ دل خوف سے یوں دھڑک رہے تھے, معلوم ہوتا تھا یہ تو ابھی گلے سے نکل کے باہر آ جائیں گے. انتہائی خوف میں جب انسان کا دل دھڑکتا ہے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ابھی باہر نکل کے آ جائے گا. یہ دو لفظ انتہائی بیوٹیفل عبارت بھی ہے, اور تصویر کھینچ کے رکھ دیا اس کیفیت کی کہ آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی تھی, کہیں ایک طرف جم کے دیکھ نہیں سکتی تھی. یہ خوف کا عالم تھا کہ گویا کہ ویژن بیکار ہو رہا تھا, آنکھوں کو کچھ سجائی نہیں دیتا تھا, دل یوں دھڑک رہے تھے, معلوم ہوتا تھا یہ تو ابھی منہ کے راستے باہر آ پڑیں گے. یہ کیفیت خوف کی, تھوڑے سے لفظ ہیں لیکن شاید ویڈیو سے زیادہ جو کیفیت ہے اس خوف کی, اس کو یہ بیان کرتے ہیں یہ دو ٹکڑے. جبکہ آنکھیں گھوم رہی تھی, ان کی نظر بیکار ہو رہی تھی, اور دل نکلے پڑے تھے دھڑک کر, یعنی وہ دل کی دھڑکن اتنی بڑھ گئی تھی خوف کے مارے, معلوم ہوتا تھا دل باہر آ رہے ہیں. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اور تم نے اللہ کے ساتھ گمان کیے, ظن یظن, تظنون, یہ از زاغ ماضی آیا ہے, جبکہ ٹیڑے ہو گئے, از بالاغا, اور از تظنون, از کے ساتھ مضارع بھی آ سکتا ہے ماضی بھی آ سکتا ہے, اور مضارع بھی آئے تو وہ ماضی کے معنی دیتا ہے. از زاغ ماضی ہے, از بلغت ماضی ہے, از تظنون مضارع ہے, میں نے اس کا بھی ماضی کا ہوگا. ازا کے ساتھ ماضی بھی آئے تو حال کا معنی عموماً ہوتا ہے, اور از کے ساتھ مضارع بھی آئے تو معنی ماضی کا ہوتا ہے. از تظنون, تمہارے پاس کتاب نہیں ہے طارق, پان کرنے لگے تھے باللہ اللہ کے بارے میں. اگلا لفظ ہے الظنون, یہ الظنون آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نون کے بعد الف کس بنا پر ہے. اگر یہ الف ہوتا نکرے کی تنوین تو ظنون ہونا چاہیے تھا, फिर हम उसे वक्फ में तो पढ़ते जुनून आ, तो ये तो नून पर तनवीन भी नहीं है और उधर अलिफ लाम भी लगा हुआ है, तो अलिफ लाम के बाद नून अलिफ ना क्यों आ गया? ये सिर्फ आयत की रियायत से है। इस सूरत में दो तीन लफ्ज और भी ऐसे आए हैं कि लफ्ज जबर पे खत्म होता है मगर उसको खींच लिया है। यह अरबों की शायरी में आम है। अरबी के मुअल्लिम के चौथे हिस्से के आखिर पर भी कुछ शेर ऐसे दिए हुए हैं कि अरबी में शेर में मसलन काला पे खत्म होता है शेर, तो वो कहेंगे काला, हालांकि वो तस्निया का सीगा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि शेर गाकर पढ़ा जाता है अमूमन, जैसी भी लय हो, और जरूरी नहीं कि साजों के साथ ही पढ़ा जाए। हमने एक दफा रेडियो पे किसी अरब को वो सोलो गाना जिसे कहते हैं, यानी बगैर वो जो है ना गाना, उसका तकाजा ये है कि जो शेर का आखिरी लफ्ज हो वो किसी हर्फ इल्लत पे खत्म हो, आ ऊ ई पे खत्म हो, तब वो, क्योंकि आवाज और गाने का तकाजा है कि आखिर पे आवाज खींची जाए, इसलिए शेर अरब यूं पढ़ते हैं। अगर खालिदुन भी है तो या खालिदी पढ़ेंगे, या खालिदू पढ़ेंगे, या खालिदा पढ़ेंगे। अगर दुन और दिन भी है ना तो दुन को दू पढ़ेंगे, दिन को दी पढ़ेंगे। तो इस तरह से नज़म का ये तकाजा था अरबों में, उसी के मातहत यहां जुनूना, असल तो है तजुन्नून बिल्लाह जुनूना, अज़ुनूना नसब, तजुन्नूना का मफूल है गुमान किए अल्लाह के साथ, कई गुमान यही मायना है ना, तो अज़ुनूना नून की जबर थी, इस तरह नसब में था, लेकिन चूंकि ऊपर बसी रा और इस तरह से आ रहा है सारा मत, इसलिए इसको जुनूना पढ़ा गया है। ये सिर्फ फासले की रियायत से है, असल लफ्ज अज़ुनून ही है। हाँ, अगर अज़ुनून का अलिफ लाम ना होता तो फिर होता जुनूना जुनूनन, और फिर भी हम आ पढ़ सकते थे। तो यहां नकरा नहीं है, है मारफा। तो तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, तुम कई गुमान अल्लाह के बारे में कर रहे थे, यह है इसका तर्जमा। जुनून जमा है जन्नून की, मस्दर नहीं है, वरना होता तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़न्नन, वो मस्दर यानी वो मफूल मुतलक होता तो जन्नन आना चाहिए था, जुनूनन तो नहीं ना आता मफूल मुतलक के तौर पर। तो ये मफूल में ही है, मफूल मुतलक नहीं है। तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, आगे इसी तरह सलसबीला और इस तरह से दो एक लफ्ज आएंगे। सबीला, सबीला को सबीला पढ़ा गया सूरत में। तो तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे थे, अल्लाह के बारे में गुमान करने लगे थे कि पता नहीं अल्लाह ने क्या वादा सच्चा दिया है झूठा दिया है। तो ईमान हिल जाने वाली बात थी, ऐसा खतरनाक मौत। हकीकत यह है कि वो तो वक्त ही ऐसा था कि जो उसमें साबित कदम रहे बस टेस्ट हो गया कि ये है सही, न टलने वाले लोग अपने ईमान से। हमें तो अल्लाह ताला रहम करे, हम तो किसी टेस्ट में से गुजरे ही नहीं है। और अजीब बात यह है कि इसी में आगे आएगा कि मुसलमानों की ये तारीख जो 13 साल 10 साल मदीने के हैं, इसमें सबसे खौफनाक और प्रिकेरियस पोजीशन मुसलमानों की इसी जंग में हुई थी। लड़ते तो रहे, उहद में भी आदमी मरे थे और नुकसान हुआ था, बदर भी थी और भी थे, फतेह ताइफ वो मक्का के बाद हुनैन की जंग में बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन बड़ा खौफनाक तरीन वक्त जिसमें मालूम होता था कि मुसलमान इज्तिमाई तौर पर वाइप आउट ना हो जाए, वो ये था। और इस मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रवैया था साबित कदमी का, वहाँ आगे आप पढ़ेंगे कि रसूलुल्लाह की ज़ात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हम नमूना बनाते हैं हलवा खाने में, पजामा ऊपर रखने में, टखनों से ऊपर, बस आसान आसान नमूना। हकीकत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ बताया गया ना कि वो नमूना थे, वो उस कंटेक्स्ट में बताया गया है जो मुसलमानों की ज़िंदगी का सबसे खौफनाक मौका था, और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिस साबित कदमी का मुजाहरा किया, वरना आदमी तो खुदा जाने क्या हो जाए। और फिर बातें ऊपर से सुननी पड़ती थी। आपने उसी खंदक को खोदते वक्त وہ مدینہ کے شمال میں جب خندق کھودی گئی تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اوپر سے میدانی زمین ہوتی ہے پہاڑی علاقے میں، نیچے تھوڑا سا کھودیں تو پتھر نکل آتا ہے، نیچے چٹان موجود ہوتی ہے. یہ ادھر ہی کڑانا وغیرہ کی طرف عام دیکھا ہے کہ کھیتوں میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، بالکل معمولی، اس بینچ جتنی اونچی بھی نہیں، لیکن نیچے ان کے خاصی چٹان ہوتی ہے. اگر کہیں کھودنے لگیں تو پتہ چلتا ہے کہ 2 فٹ نیچے تو پتھر ہے، پہاڑ نیچے بھی تو ہوتا ہے نا. تو وہاں جب وہ خندق کھود رہے تھے تو نیچے ایک چٹان نکل آئی پتھر. یہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ پھر صحابہ نے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رپورٹ کیا تو آپ گئے، اور وہ جو تھا گنتی یا کدال جس سے کھود رہے تھے، آپ نے وہ اس پتھر پہ ماری اور وہ چنگاری نکلی. پتھر سے ویسے بھی چنگاری نکلے گی جب لوہے پہ لوہا لگتا ہے. تو آپ نے اللہ اکبر کہا، اور پھر اس طرح سے دوسری اور تیسری میں وہ ٹوٹ گئی. اور آپ نے ہر نعرے پہ یہ کہا تھا، یہ جب خندق کی تیاری ہو رہی تھی، کہ مجھے دکھائے گئے ہیں شاہ ایران کے محلات کہ ہم پر ان پر قبضہ کریں گے، پھر کوئی روم کے، پھر یمن کے کہ ان پر ہمارا قبضہ ہوگا. اور پھر جب یہ جنگ کی یہ حالت ہوئی تو مسلمانوں کو کافر یہ کہتے تھے، واہ جی واہ، آگے ذکر آ رہا ہے اس کا بھی منافقوں کا، یہ تو کہتے تھے کہ ایران ہوگا اور یمن کے محلات آئیں گے، اور حالت یہ ہے کہ ڈر کے مارے پیشاب کرنے بھی نہیں جا سکتے. واقعی اس قسم کا خوف تھا. تو وہ مسلمانوں پر جو وقت آیا ہے، یہ واقعی کلائمیکس تھا خوف اور خطرے کا. تو اس کی طرف یہ سارا اشارہ ہے کہ اذ زاغت الابصار بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا. وہ تو ظاہر کیفیت ہے، نظریں پتھرا گئی تھی. پتھرا دینا اردو میں شاید اچھا ترجمہ ہو، کہ جب آنکھوں کو کوئی سجائی نہ دے کہ کیا ہو رہا ہے، فوکس آنکھوں کا ہی ٹھیک نہ ہو رہا، ٹیڑھا ہونا یہی ہوتا ہے، ایک جگہ فوکس جمتا ہی نہیں ڈر کے مارے، اور دل ابل کے اچھل کے باہر نکلنے لگے تھے، اور اللہ کے بارے میں تمہارے اندر طرح طرح کے گمان پیدا ہو گئے کہ پتہ نہیں ہے نہیں ہے اس کے وعدے کا کیا ہوگا. ہنالک ابتلی المؤمنون، وہ تھا ایسا موقع، ہنالک وہاں، اس وقت، یہ ظرف زمان بھی ہے ظرف مکان بھی ہے، وہاں یہ ہوا. ابتلی المؤمنون، مسلمان ابتلا میں ڈالے گئے. ابتلا یا ابتلی، آزمائش میں ڈالنا فعل مجہول ہے، اور المومنون نائب فاعل ہے، بے لام واو مادہ سے ابتلا یبتلی بنتا ہے. ابتلی یل، آسمان میں آزمائش میں ڈالے گئے المومنون اہل ایمان، و زلزلو اور ہلا ڈالے گئے، یہ بھی 4 حرفی مادہ ہے، زے لام زے لام. اور زلزلہ یزلزل زلزلتن و زلزالن، ہلا ڈالنا، زلزلہ خود اردو میں استعمال ہوتا ہے. زلزلو، ہلا دیے گئے وہ سب، یعنی مومن. زلزالن شدیدن، یہ زلزال مفعول مطلق ہے، کیونکہ زلزلہ کا مصدر زلزلتن بھی آتا ہے، زلزالن بھی آتا ہے. زلزالن شدیدن مفعول مطلق کی صفت ہے، شدید، ہلا ڈالے گئے وہ، ہلا ڈالنا بڑا سخت، یہ بنا لفظی ترجمہ. اور پھر ترجمہ ہوگا ان کو بڑی زور سے ہلا دیا گیا. وَإِذْ يَقُولُ، یعنی ان کی کیفیت آزمائش کی، کہ وہ ایک زلزلے کی سی کیفیت تھی ان کے اعصاب، ان کے خیالات ان پر. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور پھر مزید ستم ظریفی یہ تھی کہ اس وقت کو یاد کرو جب منافق کہہ رہے تھے. مدینے میں ایک طبقہ تھا منافقوں کا، مسلمان اوپر سے ہو گئے تھے اور پتہ نہیں اندر سے کیا کیا باتیں بناتے تھے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہہ رہے تھے منافق، یقولوں کا فائل ہے المنافقون، منافق کا ترجمہ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، نافق ینافق اور نافقہ وہ جنگلی چوہے کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے اس کے بلوں کے ساتھ، یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. بہرحال اب یہ اصطلاح ہے نافق ینافق، منافقتن و نفاقن، اندر سے کافر ہونا. تو جب منافق لوگ کہہ رہے تھے، یہ اردو میں چونکہ استعمال ہوتا ہے لہذا ہم ترجمہ منافق ہی کر سکتے ہیں، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ کہہ رہے تھے، یہ والذین رفع میں ہے، یقولو کا فائل ہو کر، المنافقون پر عطف ہے، اور وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے جن کے دلوں میں کھوٹ تھا، بیماری تھی، والذین فی قلوبہم مرض، مبتدا مؤخر ہے، فی قلوبہم کے بعد، جن کے دلوں میں ایک بیماری تھی، وہ بھی کھوٹ، دل میں ایمان کی کمزوری، ما وعدنا اللہ ورسولہ، نہیں وعدہ کیا ہم سے، یہ ما نافیہ ہے، ما کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا تھا کیا وعدہ کیا اللہ نے، جو وعدہ کیا اللہ نے، جہاں تک تو ما وعدنا اللہ ورسولہ کا تعلق ہے، ہم تینوں طرح ترجمہ کر سکتے ہیں، کیا ہم سے وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے، جو وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے، نہیں وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے، تینوں ترجمے ہو سکتے، آگے ہے اللہ نے ثابت کر دیا کہ یہ ما نافیہ ہے، نہ موصولہ ہو سکتا ہے نہ استفہامیہ ہو سکتا ہے، نہیں وعدہ کیا، وعدہ نہ ہم سے وعدہ کیا، وعدہ کے دو مفعول ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں وعدتہ کتاباً، میں نے اس سے وعدہ کیا، وعدت زیداً کتاباً، میں نے زید سے وعدہ کیا کتاب کا، یہ تو الا آ ہی نہیں سکتا منفی کے بغیر، چھوڑ تو اللہ دان اللہ ہے منفی، کیونکہ الا لگا ہوا ہے، الا منفی پر ہی آتا ہے، ترجمہ یہی ہے، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے الا غروراً مگر دھوکا، ہے یوں غرور میں نے دھوکا، اب دیکھیے مطلب تو وہی بنا کہ اللہ رسول کا وعدہ فریب تھا، دھوکا تھا، لفظی ترجمہ ہے نہیں وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے مگر دھوکا، یعنی ان کا وعدہ دھوکا ہی تھا، اب اس مفہوم کو انہوں نے ادا کیا ہے کہ جو وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے سب فریب تھا، دیکھیے یہاں کوئی لفظ ہے جس کا ترجمہ کرے سب فریب تھا، یا تو ہوتا ہوا غرور یا کلہ غرور، نہیں ہے نا ایسا لفظ، تو یہ اردو میں وہی سینس ادا کی ہے کہ اللہ رسول کا ہم سے وعدہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں تھا، ہے وہ نفی، ان کا جو وعدہ ہم سے تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا سوائے دھوکے کے، اس مفہوم کو ادا کیا جو وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور رسول نے وہ سب فریب تھا، حالانکہ یہاں کوئی جملہ نہیں ہے جس کا ہم یوں ترجمہ کریں وہ سب فریب تھا، وہ الا کی وجہ سے یہ اردو میں مفہوم ادا کیا ہے، ترجمہ ما کا نفی کا ہی ہے، وہ سب فریب تھا کا ترجمہ اسی ما نافیہ سے ہی پیدا ہو سکتا ہے، ورنہ اور تو نہیں پیدا ہو سکتا، وہ یا تو اس طرح ہوتا ما وعدنا اللہ ورسولہ کان غرورا، پھر الا نہ ہوتا تو پھر ترجمہ تھا، اب ترجمہ تو انہوں نے اسی طرح کیا ہے، اور وہ سب یعنی اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ فریب تھا، یہ ترجمہ تب ہی ہو سکتا ہے ما کے بعد الا آئے تھا، ما نافیہ کے بعد نہیں تھا کچھ بھی مگر فریب ہی تھا، اسی کو کہا وہ سب فریب تھا، بات تو وہی ہوئی، اللہ رسول کا ہم سے وعدہ فریب کے سوا کچھ نہیں تھا، اور اسی کو کہا کہ اللہ رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا وہ فریب تھا، یہ جو اردو کی ضرورت کے ماتحت لگایا ہے، ما موصولہ کا ترجمہ نہیں ہے، کیوں کہ اگر ہم کریں ما وعدنا اللہ ورسولہ، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، تو پھر یہ بنے گا مبتدا، اگر ما موصولہ مانے پھر آگے لگائیں ہوا غرور غرور، وہ تو دھوکہ ہے، الا پھر نہ لگائیں، الا صرف نفی پہ آتا ہے، اور وہ نفی اس نے سب میں شامل کر لیا، وہ سب یہی تھا بس، اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا، مفہوم اردو میں یوں ظاہر کیا ہے، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور اس وقت کو بھی پھر یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا، طائفتن گروہ پارٹی، طاف یطوفو سے اسم فاعل ہے ویسے مؤنث، لیکن اس کے معنی گروہ یا پارٹی یا جماعت کے ہوتے ہیں، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، سرب یثربو یا سرب یثربو، اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی کو ملامت کرنا، اس پر کوئی الزام ڈالنا، عربی میں اس کے معنی تو یہ ہوتے ہیں، یثرب مضارع کا صیغہ ہے، اور اسی سے سرب یثرب تسریب کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں، الزام ڈالنا، یہی لفظ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہے تھے، لا تصریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، یعنی ہم تمہیں مورد الزام نہیں ٹھہراتے. اور یہی لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر فرمائے تھے قریش کو، لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، ہم تمہیں کوئی سزا نہیں دیں گے، جاؤ تم آزاد ہو. تو تصریب اس سے باب تفعیل کا مصدر ہے، اور خود سارا بھائی یسربو کا معنی بھی مجرد میں بھی الزام ڈالنا، کسی کو ملزم بنانا، یہ ہے. اب یہ مضارے کا صیغہ نام تھا اس آبادی کا جس میں مدینہ منورہ بعد میں آباد ہوا، وہ بڑی سی وادی ہے، 10-12 میل لمبائی چوڑائی اس کی ہوگی ساری، اس ساری وادی کا نام یسرب تھا، اس میں کئی بستیاں تھیں چھوٹی چھوٹی 15-20، ان میں سے ایک وہ بستی تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹل ہوئے، پھر مسجد نبوی بنی، وہ بھی یسرب ہی کہلاتی تھی، یعنی مدینہ جسے اب کہتے ہیں، یہ زمانہ جاہلیت میں یہ یسرب کہلاتا تھا، اور ساری وادی کا نام بھی غالباً یسرب تھا. اور یہ غیر منصرف ہے، کیوں بھلا بتاؤ تو، یہ یسرب غیر منصرف کیوں ہو گیا؟ ہاں، اور نام بھی ہے، علمیت اور وزن فعل دو باتیں جمع ہوئی نا، تو چونکہ بستی کا نام ہے اس لیے یسربو یسربا یسربا یوں رہے گا، یا اہل یسربا، دیکھیے اہل کا مضاف الیہ ہوا ہے نا، لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے بے کی زبر ہے، یا اہل یسربا، اے یسرب والو. یہ مدینہ کا پرانا نام ہے، قرآن میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ یسرب اب اسے نہیں کہنا. پھر شہر کا نام ہو گیا مدینۃ النبی، نبی کا شہر، پھر مدینہ منورہ، المدینۃ النبویہ وغیرہ، حتیٰ کہ المدینہ اس کا نام. اب وہ المدینہ ہی کہیں تو مراد وہی شہر ہوتا ہے، ورنہ تو المدینہ کوئی شہر بھی ہو سکتا ہے نا معرفے کے طور پر. تو وہ پکار رہے تھے اے یسرب والو، یعنی اپنے ہم شہر جو لوگ تھے ان کو، لا مقام لکم، اب تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. مقام اسم ظرف ہے، کس سے بلا؟ ظرف کیسے بنا؟ وزن کیا ہوگا؟ بناؤ اسم فاعل، اسم فاعل بناؤ، مقیم ان کو، تو یہ ہو گئی واو تو بدل گئی، اور اسم مفعول کیا بنے گا؟ مقام. اور مقام مزید فی میں اسم مفعول ہی ظرف کا کام دیتا ہے، سمجھ آ گئی؟ پتہ نہیں تھا پہلے کہاں بھیجی ہوئی تھی، آ گئی جی آ گئی، پہلے اس کی منگنی ہو گئی تھی کہیں کہ یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، مزید فی میں اس میں مفعول ہی ظرف کا کام دیتا ہے. اب مقام کا معنی ہوگا کھڑے ہونے کی جگہ، کیونکہ اقام یقیمو کا معنی تھا کھڑا ہونا، کھڑا کرنا، تو اس کا معنی ہوگا کھڑے کرنے کی جگہ یا کھڑے ہونے کی جگہ. لا مقام، لا نفی جنس ہے، کوئی کھڑا کرنے ہونے کی جگہ نہیں ہے تمہارے لیے، یہ کیا انہوں نے، تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں ہے. ٹھکانہ اصل مطلب نہیں ہے کہ اب تمہارے لیے کھڑے ہونے کا کوئی صورت ہی نہیں ہے، بھاگو یہاں سے، یہ معنی ہے لا مقام لکم، اب کھڑے ہونے کی کوئی صورت نہیں تمہارے لیے. لا مقام لکم، تمہارے لیے کھڑے کیے جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے. فرجعو، واپس آ جاؤ. یہ فرجعو ان معنوں میں آئے کہ مسلمان جس جگہ لڑ رہے تھے وہ اس مدینہ سے نارتھ میں تھی جگہ، کہ واپس اپنے گھروں کی طرف آ جاؤ، فرجعو، تم لوٹ آؤ. یہ تو فعل امر ہے نا، وہ اپنے ساتھیوں کہہ رہے تھے کیا لڑنا ہے، اب بیکار ہے یا کوئی سٹینڈ لینا، وہ سٹینڈ کا بھی وہی مفہوم بنتا ہے کھڑے ہونے کا، اب تم کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتے، جم کے کھڑے ہونا اب ناممکن ہو گیا تمہارے لیے، واپس آؤ. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازتیں لیتا تھا. استاذنہ یستاذنو، استیزانن اجازت طلب کرنا، اور اجازت دینا کی عربی کیا ہوتی ہے؟ अजेन या जनो यस्ताजेनो फरीकुन फायल है, एक फरीक एक पार्टी इजाजत तलब करती है, लेकिन पीछे चूंकि इज से बात शुरू हुई है तो वो इजाजत तलब करते थे, कर रहे थे, करने लगे थे, यूं तर्जमा हो जाएगा। और किससे इजाजत? अन्नबिया फरीकुन की सिफत है मिन हुम, मिन कोई सिला नहीं है यस्ताजनों का, इस्ताजना मिन हो नहीं कहते, इस्ताजना हु कहते हैं, ये मिन हुम इन मनों में नहीं है कि उनसे वो इजाजत तलब कर रहे थे ना, फरीकुम मिन हुम उनमें से एक ग्रोह यस्ताजनो इजाजत तलब कर रहा था अन नबी या नबी से, अन नबी मफूल है यस्ताजनो का, उनमें से एक ग्रोह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब करता था। इजाजत किस कीजिए, हमें घर जाने दीजिए। ये नॉर्थ में थी खंदक और मदीना, खैर अब तो सारी आबादी बल्कि उस खंदक से भी आगे कहीं फैल गई है, तो पीछे पुराना शहर जो है वो इधर रह जाता था। खंदक से अब भी मेरे ख्याल में पैदल कोई आधे घंटे का रास्ता होगा मस्जिद नबवी तक, जिस जगह नहीं खंदक अब नहीं है उसका, तो बल्कि उसमें बड़ा इख्तलाफ हुआ है कि खंदक कहाँ थी, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ पोजिशनें उसकी दी हैं, क्योंकि बाद में वो बंद हो गई और लोगों के आने जाने से और सैलाबों से, उसने कहाँ खड़े रहना था। दूसरे भी एक रुकावट थी, लोगों ने खुद ही उसको पाट दिया होगा बाद में। अलबत्त वहाँ पाकिस्तान हाउस में मैं ठहरा था 8-10 दिन 89 में, तो उससे परे मैं दुकानों में कोई चीज़ लेने गया तो वहाँ लिखा हुआ था हय्युल खंदक, फिर बड़े नक्शों में भी देखा है, एक मोहल्ला है मदीना का जिसका नाम ही है मोहल्ला खंदक, इसके मतलब है खंदक वहाँ तक आती थी, जबल सला के करीब है वो। तो बहरहाल वो अपने इजाज़त मांगते थे कि हमें घर जाने दे, वहाँ की खंदक खोलने के बाद भी पहरा देना पड़ता था, ये तो नहीं था कि अब सो जाए। तो इतनी लंबी खंदक पर मुसलमान दिन रात 24 घंटे पहरा दे रहे थे, क्योंकि ये तो खतरा था, दुश्मन किसी वक्त उसके 100 आदमी लग जाए तो खंदक को फाट देंगे, अंदर आ जाएंगे, हमला कर देंगे। बल्कि एक आध दफा घोड़ा दौड़ा के भी आदमी पार आ गए, दूसरी तरफ से घोड़ा तेज दौड़ाया और इतने घोड़े को जंप लगाया कि खंदक पार कर गया, वो अब्दुल्वद वहां कत्ल हुआ था एक शख्स। तो इस तरह से वहां पहरा देना पड़ता था, बल्कि बाद दफा मुसलमानों की पार्टियां रात में आपस में तीर अंदाजी कर दी, कोई आदमी शहीद हुए थे, समझा कि दुश्मन का आदमी आ गया अंदर, कोई गलत फहमी हुई, आपस में ही वो अंधेरे में तीर चला दिए, वहां तो पहरा देना पड़ता था। तो ये तो नहीं है कि अब आके घर आराम से बैठ जाओ। फिर सर्दी का मौसम था और भूख के ऊपर से राशन जो मिलता था वो भी बड़ी तंगी से, पीछे तो एक तरह की ब्लॉकेड हो गई थी। तो इस हालत में वो इजाजतें मांगते थे, यकूलूना कहते हैं, इजाजत मांगते हैं नबी से और कहते हैं इन्ना बुयूतना औरा, हमारे घर खाली पड़े हैं, खुले पड़े हैं, इन्होंने तर्जमा किया है, हमारे घर खुले पड़े हैं। औरतुन ऐन वाव रे मादा, ये आवेरा या आवारो इस्तेमाल होता है, इसके मैंने होते हैं एक आंख से काणा होना भी, आवर काले को कहते हैं, दज्जाल के बारे में आया है। फिर शायद और तरह आ रहा या उरू भी इस्तेमाल होता हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आवेरा इस्तेमाल होता है और आवेरा में तो वाव पड़ी जाएगी ना, आवेरा या वारो, इससे ये एक लफ्ज है औरतुन। औरतुन के अरबी में माना है कि अरबी में माना है वल्नरेबल पॉइंट, जी जगह जो एक्सपोज हो खतरे और हमले के लिए, मसलन किसी ने हथियार पहने हुए हैं फौजी ने और एक जगह कहीं है कि यहां नेजा मारा जा सकता है, वो उसका वल्नरेबल पॉइंट होता है, कमजोर जगह जहां से उस पर हमला किया जा सके, असल मायना वही होता है इसका, किसी का वो कमजोर पहलू जहां से उस पर हमला किया जा सके, उसको अरबी में कहते हैं औरतुन और जमा औरातुन। ये बुनियादी मायना है। फिर انسان کے لیے اس کے اعضائے جنسی وغیرہ کے بھی لیے لفظ اورا استعمال ہوتا ہے. نازک اعضاء جیسے آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ اس کو وہ لے گئے اور اس کے نازک اعضاء پر یہ فلاں سگریٹیں لگائیں یا کچھ پڑھتے ہیں اخباروں میں. نازک اعضاء خود ہم اردو میں اسی لیے استعمال کرتے ہیں, تو ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور قرآن کریم میں ان اوقات کے لیے بھی آیا ہے جہاں کپڑے وغیرہ اتار کے رکھنے کی اجازت ہے رات کو سوتے وقت. ثلاث عورات لکم, تین جو ہے تمہارے لیے وہ پردے سے ہٹ کر رہنے کے اوقات ہیں, وہ جو باہر نکلنے اور نوکروں کے آنے جانے کے احکام کے سلسلے میں آیا ہے. تو یہاں عورت ان کا معنی ہے وہ جو ولنریبل ہے حملے کے لیے, کہ وہاں سے دشمن حملہ کر سکتا ہے. ایسی چیز ہے, ہمارے گھر تو عورت ہے. اور یہ جو اردو کا عورت ہے شاید اسی عربی سے آیا ہو, لیکن عربی میں عورت کے معنی امرأت نہیں ہوتے. اور عورت عربی میں چھوٹی تے سے لکھا جاتا ہے, اور اس کے معنی ہوتے ہیں قابل حملہ جگہ یا نازک جگہ یا کمزور پوائنٹ, یہ اس کا اصل معنی ہوتا ہے. تو ان بیوتنا عورا, ہمارے گھر تو آ رہا ہے, یعنی وہاں تو کھلا حملہ ہو سکتا ہے, کوئی ڈیفینس نہیں, کوئی وہاں پیرا نہیں, کوئی کچھ نہیں. یہ وہ کہتے تھے ان بیوتنا عورا, کہ ہمارے گھر تو وہ جگہ ہے جہاں سے بآسانی حملہ ہو سکتا ہے. اور اسی کا ترجمہ انہوں نے کیا, ہمارے گھر